लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में हम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के मुख्य बिंदुओं पर संक्षेप में जिक्र करेंगे। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजा घर के झरोखे में 13 मार्च 2013 को दाखिला होते की थी, तो वहीं 21 अप्रैल 2025 को पास्का रविवार के दिन वैटिकन के झरोखे में उन्होंने अंतिम बार दर्शन देते हुए दुनिया से विदा ली। सन 2013 में संत पापा फ्रांसिस की प्रथम प्रेरित यात्रा हमें उनके परमाध्यक्षीय काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और संकेतों जैसे कि शांति, निकटता, गरीबी, हाशिए पर जाना को व्यक्त करती है, जो वैश्विक कैथोलिक कलीसिया के धर्म गुरु स्वरूप हमारे लिए उनके कार्यों की विशेषता प्रस्तुत करती है। संत पापा फ्रांसिस का लंपेदूसा जाने का निर्णय ब्राजील में विश्व युवा दिवस में उनकी पहली भागीदारी तथा सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के संग उनका गहरा स्नेहपूर्ण संबंध शुरू से ही वैश्विक कैथोलिक कलीसिया के धार्मिक गुरु के रूप में उनके महत्वपूर्ण पिता तुल्य नेतृत्व की झलक प्रस्तुत करती है। सन 2014 का परम धर्माध्यक्षीय काल संत पापा फ्रांसिस और शांति के सार स्वरूप व्यक्त किया जा सकता है, दीवारें नहीं बल्कि सेतु। यह मेल मिलाप और वार्ता का संदेश है जो संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के द्वितीय साल की विषय वस्तु रही। अपने इस संदेश के संग उन्होंने अपने पूर्ववर्ती संत पापाओं के कदमों का अनुसरण करते हुए पवित्र भूमि की यात्रा की और तुर्की के मस्जिद में प्रवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने इस साल यूरोप के नेताओं से अपील की कि मानव सम्मान हमेशा सभी लाभों के ऊपर हो। वर्ष 2015 उनके परमाध्यक्षीय काल को हम संत पापा फ्रांसिस और लाउदातो सी का वर्ष घोषित करते हैं। उन्होंने लिखा, सामान्य घर की देख रेख और अति संवेदनशीलों की सुरक्षा, जिससे उन्हें घर, रोजगार और भूमि की निश्चितता हो। संत पापा फ्रांसिस इस साल विभिन्न कार्यक्रमों में व्यतीत किए जो अपने में महत्वपूर्ण रहे। लाउदातो सी विश्व पत्र पर हस्ताक्षर से लेकर क्यूबा की प्रेरित यात्रा, ग्राउंड जीरो में प्रभावकारी प्रार्थना से लेकर यूएन में उनका संबोधन रहा। 2016 परमाध्यक्षीय काल को हम संत पापा फ्रांसिस और करुणा वर्ष की जयंती की संज्ञा देते हैं। संत पापा ने इस वर्ष संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को खोला और विश्व के लिए इस बात को स्पष्ट किया कि ईश्वर को क्या अति प्रिय है। इसका अर्थ उसके संतानों को क्षमा देना, अपने को दुनिया के लिए खोलना है। यह पवित्र वर्ष संत पापा फ्रांसिस के लिए एक लंबा आलिंगन का वर्ष रहा, जिसकी ऐतिहासिक शुरुआत मास्को के ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष किरिल और पूरे रूस से शुरू हुई। 2017 परमाध्यक्षीय काल में संत पापा फ्रांसिस द्वारा गरीबों का आलिंगन किया गया। स्वर्ग के लिए पासपोर्ट, संत पापा फ्रांसिस के लिए यह गरीब लोग हैं। उनके लिए यह वर्ष प्रथम विश्व गरीब दिवस के रूप में घोषित किया गया। सन 2017 में संत पापा फ्रांसिस ने मिस्र की प्रेरित यात्रा की, जहां भ्रातृत्व के एक मार्ग की शुरुआत हुई जो निरंतर फलदायक रहा और यह म्यांमार के सुदूर प्रांतों तक पहुंचते हुए रोहिंग्या लोगों के दुख, दर्द और आंसू को साझा किया। वर्ष 2018 को हम संत पापा और युवाओं की आशा घोषित करते हैं, एक धर्म सभा जो उनके बारे और उनके संग वार्ता करती है। सन 2018 ने नई पीढ़ियों की आवाज को उनकी मुस्कान आशा और उनके सवालों को वैटिकन तक पहुंचाया। कलिस्से के माध्यम एक नई हवा चली जो संत पापा फ्रांसिस को चीन के संग एक ऐतिहासिक समझौते की ओर ले चली। सन 2019 हम संत पापा के परमाध्यक्षीय काल को संत पापा और मानवता के संग भ्रातृत्व की संज्ञा दे सकते हैं। एक परिवार के रूप में साथ रहना। अबू धाबी से संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर अल तैयब के ग्रैंड इमाम ने अपने इस संदेश को विश्व में प्रचारित और प्रसारित किया। यह वह वर्ष है जब संत पापा ने पैन अमेज़न क्षेत्र की आपात स्थितियों के संबंध में एक धर्म सभा की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने शोषित नाबालिगों की सुरक्षा के संदर्भ में कलिस्से में शुद्धिकरण और नवीनीकरण की प्रतिक्रिया को मजबूती लाने की पहल की। वर्ष 2020 को हम संत पापा फ्रांसिस और पेत्रुस का जहाज की संज्ञा देते हैं। महामारी कोविड-19 के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने लगातार प्रार्थना के माध्यम दुनिया को अपनी निकटता का एहसास दिलाया और दर्द और बलिदानों के एक नाटकीय ऐतिहासिक दौर का सामना किया। अविस्मरणीय दृश्य महामारी की स्थिति इस वर्ष को चिन्हित करती है। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वास में कलिस्से रूपी नाव को आगे बढ़ाते हुए इस निश्चितता के संग विश्व कलिस्से की अगुवाई की कि ईश्वर हमें तूफान की दया पर नहीं छोड़ते हैं। सन 2021 परम धर्माध्यक्षीय काल को हम संत पापा आशा बलिष्ठ है की संज्ञा देते हैं। इराक से लेस्बोस तक संत पापा फ्रांसिस भूमध्य सागरीय बेसिन में शांति की एक तीर्थ यात्रा शुरू की जहां मानवता सभ्यता रूपी जहाज के टूटने का जोखिम उठाती है। संत पापा फ्रांसिस प्रार्थना और मरियम पर भरोसा रखते हुए दुनिया के साथ चलना जारी रखे। दुनिया धीरे धीरे महामारी से बाहर निकली और संत पापा फ्रांसिस ने टीकाओं के उचित वितरण की अपील की। सन 2022-23 परमाध्यक्षीय काल को हम संत पापा फ्रांसिस और टुकड़ों में तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा देते हैं। विनाशकारी युद्ध के गर्त में डूबा यूक्रेन विश्व के पच्चीकारी का केवल आखिरी टुकड़ा है जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिसने संत पापा फ्रांसिस को आंसुओं से भर दिया। अंतःकरण के बदलाव हेतु संत पापा फ्रांसिस ने अपने हर संबोधन में निवेदन जारी रखे। उन्होंने सच्चाई मेल मिलाप और वार्ता हेतु कनाडा कजाकिस्तान बहरीन और फिर अफ्रीका देशों की ओर अपने कदम बढ़ाए। एक वर्ष जो संत पापा बेनेडिक्ट 16वें का पिता के घर वापसी से समाप्त हुआ। सन 2024 और 25 संत पापा और जयंती का वर्ष रहा। संत पापा फ्रांसिस ने इस वर्ष जयंती की शुरुआत हेतु प्रार्थना और तैयारी का आह्वान किया, जिससे विश्व के ख्रिस्तीय माता कलिस्से की करुणा का अनुभव कर सकें। उन्होंने संत पेत्रुस महागिरजाघर के द्वार खोलते हुए जयंती वर्ष की शुरुआत की। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी बीमारी से चंगाई हेतु स्वयं अस्पताल की तीर्थ यात्रा की और बीमार और पीड़ितों के संग अपनी एकात्मकता प्रकट करते हुए अंततः उस तीर्थ यात्रा को पूरी की जिसे हर तीर्थ यात्री कलिस्से को एक दिन पूरी करनी है। मृत्यु सारी चीजों का अंत नहीं लेकिन एक शुरुआत है। उक्त बातें संत पापा फ्रांसिस ने 7 फरवरी को मिलान के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल एंजेलो स्कोला की पुस्तिका एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा वृद्धावस्था पर विचार जो इतालवी भाषा में लिखी गई है के लिए अपनी प्रस्तावना लिखी। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी प्रस्तावना में लिखा कि मैंने इन पृष्ठों को बहुत भावुकता से पढ़ा जो एंजेलो स्कोला के विचार और स्नेह से उत्पन्न होते हैं, जो धर्माध्यक्ष के रूप में प्रिय भाई हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिस्से में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। अपने हृदय के आभार व्यक्त करते हुए संत पापा ने लिखा, सर्वप्रथम मैं उनके चिंतन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता के भाव अर्पित करता हूँ, जो व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को एक ऐसे तरीके से जोड़ता है जिसे मैंने विरले ही कभी देखा हो। इसमें प्रथम है अनुभव, जो दूसरों को प्रकाशित करती है, संस्कृति जो पहलू को मूलभूत आधार प्रदान करती है। इस सुखद अंतर संबंध में जीवन और संस्कृति सुंदरता के साथ पुष्पित होती है। संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, एंजेलो स्कोला के विचारों से मैं विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपने लिए पाता हूँ जो मेरे अपने अनुभव से मेल खाते हैं। एंजेलो हमें बुजुर्गावस्था के बारे में बतलाते हैं, अपने बुढ़ापे की स्थिति के बारे में। वे इस बारे में अत्यंत आत्मीयता से लिखते हैं, यह मुझ पर अचानक तेजी से और कई मायनों में अप्रत्याशित रूप से आ गया। उन्होंने जिस शब्द से खुद को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित किया है, उस शब्द के चयन में मैं स्वयं अपने को लेखक के विचारों से प्रतिध्वनित होता पाता हूँ। हाँ, हमें बुढ़ापे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन तो जीवन है और वास्तविकता को छुपाने का अर्थ है चीजों की सच्चाई को धोखा देना। एंजेलो स्कोला ने अपनी पुस्तिका पर दादा दादी के मानवीय और सामाजिक मूल्य पर प्रकाश डाला है। इन पृष्ठों पर हम कार्डिनल एंजेलो स्कोला की उन बातों को पाते हैं जो उनके हृदय के भाव को व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार यीशु के साथ अंतिम मुलाकात के लिए वे स्वयं को तैयार कर रहे हैं, जो हमें एक तरह से सांत्वनादायक निश्चितता प्रदान करती है कि मृत्यु हर चीज का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। यह एक नई शुरुआत है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार 26 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में होगा। दिवंगत संत पापा फ्रांसिस का पार्थिव शरीर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बुधवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शनिवार सुबह उनके अंतिम संस्कार तक वहीं रखा जाएगा। शनिवार 26 अप्रैल को दुनिया भर से आए विश्वासियों की उपस्थिति में प्रातिधर्माध्यक्षों, कार्डिनलों, महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के साथ कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। पवित्र मिसा का समापन अंतिम अनुशंसा और विदाई समारोह के साथ होगा। दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को पहले संत पेत्रुस महागिरजाघर में और फिर संत मरिया मेजर महागिरजाघर में स्थित समाधि स्थल पर ले जाया जाएगा। बुधवार 23 अप्रैल को संत पापा के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को कासा सांता मार्था के चैपल से संत पेत्रुस महागिरजाघर में ले जाया जाएगा। सुबह 9 बजे प्रार्थना के साथ कामरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल अनुवाद का अनुष्ठान की अध्यक्षता करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार जुलूस सांता मार्ता के प्रांगण और रोमन प्रोटो मार्टियर्स के प्रांगण से होकर गुजरेगा। जुलूस फिर बेल्स ऑफ आर्क से संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में प्रवेश करेगा और केंद्रीय द्वार से वाटिकन महागिरजाघर में प्रवेश करेगा। ऑल्टर ऑफ कन्फेशन अर्थात प्रधान वेदी पर कमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल वचन की आराधना की अध्यक्षता करेंगे। इसके समापन पर दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के पार्थिव शरीर के दर्शन शुरू होंगे। सोमवार की रात 8 बजे कमरलेंगो कार्डिनल केविन फारेल ने मृत्यु की पुष्टि और दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को ताबूत में रखने की धर्म विधि के अनुष्ठान की अध्यक्षता की। यह समारोह वाटिकन के कासा सांता मार्ता के चैपल में हुआ। उपस्थित लोगों में कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे और दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के परिवार के सदस्य, साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अंद्रेया आर्केजेली और उपनिदेशक डॉक्टर लुइजी कार्बोन शामिल थे। अनुष्ठान के बाद वाटिकन सिटी स्टेट के स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अंद्रेया ने पुष्टि की कि संत पापा की मृत्यु स्ट्रोक से हुई, जिसके कारण वे कोमा में चले गए और अपरिवर्तनीय कार्डियो सर्कुलेटरी गिरावट से हुई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार संत पापा को मल्टी माइक्रोबियल द्विपक्षीय निमोनिया, मल्टीपल ब्रोंकाइटिस, उच्च रक्तचाप और टाइप 2 मधुमेह के कारण तीव्र श्वसन विफलता का पूर्व इतिहास था। उनकी मृत्यु की पुष्टि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक थानाटोग्राफी के माध्यम से की गई। वाटिकन सिटी के स्वास्थ्य और स्वच्छता निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अंद्रेया आर्केजेली ने रिपोर्ट में लिखा, मैं घोषणा करता हूं कि मृत्यु का कारण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और निर्णय अनुसार ऊपर बताए गए हैं, और वाटिकन प्रेस कार्यालय ने सोमवार शाम को रिपोर्ट जारी की। और मुझे वापस प्रांगण में लाने के लिए धन्यवाद। यह आभार संत पापा फ्रांसिस के अंतिम शब्दों में से एक था, उस व्यक्ति के लिए जिसने बीमारी के दौर में, बल्कि निश्चित रूप से उससे भी पहले, अथक रूप से उनकी देखभाल की थी। वह व्यक्ति मासिमिलियानो स्ट्रेपेटी है, वह नर्स जिसने खुद को संत पापा के अनुसार एक बार कोलन सर्जरी का सुझाव देकर उनकी जान बचाई थी, और जिसे बाद में संत पापा ने 2022 में अपना निजी स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किया था। रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती होने के 38 दिनों के दौरान और कासा सांता मार्ता में उनके ठीक होने के दौरान 24 घंटे उनके साथ श्री मासिमिलियानो पास्का रविवार को उर्बी एत ओर्बी आशीर्वाद के दौरान संत पापा के साथ थे। एक दिन पहले वे संत पेत्रुस महागिरजाघर में एक साथ गए थे, ताकि अगले दिन जब वे संत पेत्रुस महागिरजाघर के मुख्य झरोखे में दिखाई देंगे तो वे जिस मार्ग से गुजरेंगे उसकी समीक्षा कर सकें। रविवार की सुबह संत पेत्रुस महागिरजाघर के अग्रभाग के मुख्य झरोखे से संत पापा ने विश्व और प्रांगण में उपस्थित विश्वासियों को उर्बी एत ओर्बी आशीर्वाद दिया। प्रांगण में करीब 50,000 श्रद्धालु थे। संत पापा ने पापा मोबाइल में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण का दौरा कर एक आखिरी सार्थक आश्चर्य देना चाहा, लेकिन उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट जरूर हुई। क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ? उन्होंने श्री मासिमिलियानो से पूछा, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद संत पापा ने दोपहर में आराम किया और रात को शांतिपूर्ण भोजन किया। सुबह करीब 5:30 बजे बीमारी के पहले लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर नजर रखने वालों ने तुरंत प्रतिक्रिया की। एक घंटे से ज्यादा समय बाद कासा सांता मार्ता में अपने दूसरे मंजिल के अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटे हुए मासिमिलियानो को हाथ से विदाई देने के बाद संत पापा कोमा में चले गए। उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद लोगों के अनुसार उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यह सब कुछ जल्दी में हुआ। यह एक विवेकपूर्ण मृत्यु थी, लगभग अचानक, बिना किसी लंबे समय तक पीड़ा या सार्वजनिक चिंता की। एक ऐसे संत पापा के लिए जो हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही आरक्षित रहे थे। पास्का के दिन शहर और दुनिया को आशीर्वाद देने और इतने लंबे समय बाद एक बार फिर लोगों को गले लगाने के बाद के दिन उनका निधन हुआ। वे लोग जिनके साथ 13 मार्च 2013 को अपने चुनाव के पहले क्षणों से ही उन्होंने साथ साथ चलने का वादा किया था, वहां से भीड़ ने, खासकर बच्चों ने, उन्हें गले लगाया। जमेली से छुट्टी मिलने के बाद यह उनकी पहली सवारी थी और उनके जीवन की आखिरी सवारी थी। थके हुए लेकिन संतुष्ट संत पापा ने अपने निजी स्वास्थ्य सेवा सहायक को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे प्रांगण में वापस लाने के लिए धन्यवाद। वे हृदय स्पर्शी शब्द अर्जेंटीना के संत पापा की गहरी जरूरत को दर्शाते हैं, जिन्होंने एक बार फिर लोगों के बीच होने के मानवीय संबंधों को अपनी परमाध्यक्षीय पहचान बना लिया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।